జయ రాధమాధవ కుంజ విహారీ జయ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ కేశోదనందన వ్రజ జన రంజన యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యమోనా తీరా వనచారి యమునా తీరా వనచారి రాధమాధవ కుంజ విహారీ జయ జయ రాధమాధవ కుంజ విహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రే రామ హరే రామ 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 హరే హరే రే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Jnadivirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksharan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vrishtam Stabitam Yena Bhutale Vyam Rupa Kadamaiham Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhavada Kamalam Shri Guran Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatta Desha Tarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhyam Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha ಪಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಮದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯತಾಂ ಸುರತೋರ್ಪುಂಗುರ್ ಮಾಮಂದಮತೆರ್ಗತಿ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವಾಪದಾಂ ಭೋಜೋ ರಾಧಾಮದನಮೋಹನೋ ದಿವ್ಯದೃಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದಃ ಶ್ರೀಮದ್ರತ್ನಾಕಾರಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾ ಶ್ರೀಲಗೋವಿಂದದೇವೋ ಕೃಷ್ಣಾಲಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸರಸಾರಂಭಿ ವಂಶೀವಟತಟಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ಷಂ ವೇಣೋ ಸ್ವನೇರ್ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥಃ ಶ್ರೀಯಸ್ತು ನಃ. ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಲ್ ಹಮ್ನೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ್ ಕುಛ ಲೋಗೋಂಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಉಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಜೊ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರೆಂಗೆ.
ನಮಸ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾಧ್ಯಮೀಶ್ವರಂ ಪ್ರಕೃತೇ ಪರಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ ಮಾಯಾಜವನಿಕಾಚನ್ನಂ ಅಜ್ಞಾಧೋಕ್ಷಜಮವ್ಯಯಂ ನ ಲಕ್ಷಸೇ ಮೂಢದೃಶಾ ನಟೋ ನಾಟ್ಯಧರೋ ಯಥಾ ತಥಾ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಮುನೀನಾಮಲಾತ್ಮನಾಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇ ಮಹೀ ಸ್ತ್ರಿಯಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಯೇ. ಯಥಾರಿಷಿಕೇಶಕಲೇನ ದೇವಕಿ ಕಂಸೇನ ರುದ್ಧಾತಿ ಚಿರಂ ಸುಚಾರ್ಪಿತಾ ವಿಮೋಚಿತಾಹಂ ಚ ಸಾತ್ಮಜಾ ವಿಭೋ ತ್ವಯೈವ ನಾತೇ ನಮೋರ್ವಿಪದ್ಗಣಾತ್. ವಿಷಾನ್ಮಹಾಗ್ನೇ ಪುರುಷಾದ ದರ್ಶನಾತ್ ಅಸತ್ಸಭಾಯ ವನವಾಸಕೃಚ್ಛತಃ ಮೃದೇ ಮೃದೇನೇಕಮಹಾರಥಾಸ್ತ್ರತೋ ದ್ರೌಮ್ಯಸ್ತ್ರತಶ್ಚ ಸ್ಮಹರೇರಭಿರಕ್ಷಿತಾ ವಿಪದ ಸಂತುದ ಶಶ್ವತ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗದ್ಗುರೋ ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಪುನರ್ಭವ ದರ್ಶನಂ. ಜನ್ಮೈಶ್ವರ್ಯಶ್ರುತಶ್ರೀಭಿರ್ನೇದಮಾನಮದಪ್ಪುಮಾನ್ ನೈವಾರ್ಯತ್ಯಭಿಧಾತುಂ ವೈ ತ್ವಾಮಕಿಂಚನ ಗೋಚರಂ. ನಮೋ ಕಿಂಚನ ವಿತ್ತಾಯ ನಿವೃತ್ತ ಗುಣವೃತ್ತಯೇ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಕೈವಲ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ. ಮನ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಕಾಲಮೀಶಾನಂ ಅನಾದಿ ನಿಧನಂ ವಿಭುಂ ಸಮಂ ಚರಂತಂ ಸರ್ವತ್ರ ಭೂತಾನಾಂ ಯನ್ಮಿತಃ ಕಲಿ. ನ ವೇದ ಕಶ್ಚಿತ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೀರ್ಷಿತಂ ತಯೇವ ಮಾನಸ್ಯ ನೃಣಾಂ ವಿಡಂಬನಂ. ನ ಯಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ದಯಿತೋಶ್ಚಿ ಕರ್ಹಿ ಚೇತ್ ದ್ವೇಷಶ್ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಮಾಮತಿರ್ನೃಣಾಂ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಕರ್ತುರಾತ್ಮನಃ ತಿರ್ಯನ್ ಋಷಿಷು ಯದುಷು ತದತ್ಯಂತ ವಿಡಂಬನಂ. ಗೋಪ್ಯಾ ದದೇ ತ್ವಯಿ ಕೃತಾಗಸಿದಾಮ ತಾವತ್ याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोह्यति वीर्यप्यद्धिवेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य नैवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वं यस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां पारावताराण्यन्ये भुवो नावैवो ददो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभिक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्तचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अद्याप्यनस्त्वं सकृते हितप्रभो जीवासति सुत्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् पारायणं राजसुयोजितां हसां केवयानामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यदेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषधिविरुद्धः वनाद्रिनिधन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षिते अथ विश्वेश्वविश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतेर्मधुपते स्वकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वोद उदन्वती श्रीकृष्ण कृष्णसखा वृष्णिवृषभानविद्रग् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्त्वल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तितां परमानन्दपाटान्या प्रेमवर्षक्षरायते सर्वानन्दसर्वसेव्या श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदैकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्दो नमोऽस्तुते असाधु साधुतादायिन्मतिनीचोच तारक अनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा कुंती महारानी प्रार्थनाओं के श्रृंखला में पहला तीन श्लोक जो हैं तत्व को वर्णन करने वाला श्लोक है। उसके बाद दो श्लोक जो हैं भगवान की गुणों को वर्णन करने वाला श्लोक है। उसके बाद तीन श्लोक भगवान के लीलाओं को वर्णन करने वाला श्लोक है। तत्व का वर्णन करने वाले तीन श्लोकों में पहला तीन श्लोकों में हमने कुंती महारानी का जो नौ विशेषताएं भगवान की तत्व विशेषताएं उनका चर्चा किया और उसके बाद कुंती महारानी भगवान का जो गुणों को वर्णन करती हैं ये तीन श्लोकों में किस प्रकार कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे ये दो श्लोकों में गुणों को वर्णन कर रही है। कल इसके विषय में चर्चा करते हुए हमने देखा कि तत्व का वर्णन करने के बाद पहले के दो श्लोक में तीसरे श्लोक में भगवान का वास्तविक तत्व को निरूपण करते हुए कहती है, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्तियुग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्री। जब भगवान की महिमा या तत्व का विचार करते हैं तो स्वाभाविक तरीके से हमारे हृदय में नम्रता प्रकट होती है। कुंती महारानी कथम पश्ये मही स्त्री, मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ, बड़े बड़े परमहंस लोग मुनि लोग अमलात्मा नाम शुद्ध लोग आपको नहीं पहचानते तो मैं कौन होती हूँ। जैसे हृदय में नम्रता प्रकट होता है भगवान प्रेम देते हैं, यानी कुंती महारानी का जो स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण के साथ वो प्रेम प्रकट हुआ, तुरंत डिस्टर्बेंस शांत हो गया और स्वाभाविक प्रेम से कृष्ण को संबोधित, कृष्णा या तुम कृष्ण हो, यू आर माई कृष्ण। बाद में चर्चा किया वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार कुंती महारानी स्मरण कर रही है किस प्रकार हे कृष्ण तुम्हारा एक ही काम है सबको आनंद देना। आपने आनंद दिया वसुदेव को पुत्र के रूप में प्रकट होके, उससे ज़्यादा आनंद दिया देवकी को उनके गर्भ से प्रकट होके उनको माँ के रूप में स्वीकार करके, नंदगोप कुमाराय नंदगोप नंद को नंद महाराज को आनंद प्रदान किया और आपने यशोदा माई को आनंद प्रदान किया। उसके साथ साथ में गोविंदाय, ये गोविंदाय के द्वारा वो सारे माधुर्यमय लीलाओं को कुंती महारानी वर्णन कर रही है कि माधुर्यमय लीलाओं गोपियों को आपने आनंद प्रदान किया। इसके बाद नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती महारानी अभी कृष्ण को ज़्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर भतीजा बुआ को अगर प्रणाम किया तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कृष्ण को शुरुआत है कि ना, चर्चा किया था नमस्ते बोलते कृष्ण का क्या कर रहे हो तुम, मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो, मैं तो तुम्हारा पति, मुझे प्रणाम करना था तुमको। अभी अभी वो उस प्रकार की असमंजस अवस्था में कृष्ण को नाला नहीं चाहती, इसलिए सबसे पहला नमः पंकज नाभाय। कुंती महारानी भगवान के जो नाभि से प्रकट हुआ जो कमल है उसका वर्णन कर रही है, यानी भगवान की नाभि जो है सारे चीज़ों का आगार है, सारे लोगों का, सारे भक्तों का, सारे जगत का आश्रय है। नमः पंकज मालिने, भगवान सारे भक्तों को धारण करते हैं, अपने सौंदर्य का वर्णन करते हैं सुंदरता का गुण को। नमः पंकज नेत्राय, भगवान के जो नेत्र हैं वो जैसे कमल विकसित होता है भक्तों को दर्शन करने मात्र से उनका आंग भी विकसित हो जाता है, यानी भक्तों के ऊपर दर्शाया गया जो कृपा है उसका वर्णन हो रहा है। और नमस्ते पंकजांग्रे, किस प्रकार भगवान बड़े दयालु होकर लोगों को अपने चरणों में सेवा प्रदान करते हैं इसका वर्णन ये चार चीज़ों में हुआ है, चार गुणावलियों का वर्णन हुआ है। सबसे पहला भगवान सबके आश्रय है, भगवान जो है वो बहुत सुंदर हैं और भगवान जो है अपने भक्तों को अनुकंपा दिखाते हैं और सेवा प्रदान करते हैं, ये चार चीज़ों को इस श्लोक में वर्णन किया गया है। और बाद में हमने ये कहा जैसे प्रेम प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होते ही तुरंत कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चाय, ये भी नाम संकीर्तन है, कल हमने इसके ऊपर थोड़ा सा जोर से चर्चा किया। जैसे नम्रता प्रकट होती है, दीनता प्रकट होती है, तुरंत हृदय में नाम संकीर्तन या प्रेम प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होने के बाद एक ही चारा रह जाता है ओके नाम संकीर्तन, तो कृष्णाय वासुदेवाय नाम संकीर्तन है। उसके बाद आगे की जो तीन श्लोक है यथा ऋषिकेश कलेन देवकी और विशान महाग्ने और विपदा संतुता, ये तीन श्लोकों में कुंती महारानी भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रही है। तो सबसे पहला लीला भगवान की लीला वर्णन करती हैं कुंती महारानी, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धाचिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्घणात्। कल इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा किया किस प्रकार ऋषिकेश हे कुंती महारानी, भगवान आप ऋषिकेश हो, ऋषिकेश होने के नाते सारे लोगों की इंद्रियां नियंत्रण करते हो, इंद्रियों को जानते हो और मेरा हृदय को भी जानते हो। खलेन देवकी कमसेन, देवकी कमसेन रुद्धाचिरम चितार्पिता, आपने मुक्त कराया देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया। और कुंती महारानी अपने आप को थोड़ा कंपैरिजन कर रही है देवकी के साथ, देवकी को आपने बड़े लंबे काल तक कंस ने बांध के रखा था कारागार में, उससे मुक्त किया, लेकिन विमोचिता हम, मुझे आपने बहुत सारे अनेकों अनेकों दुखों से आपने बचाया। सात्मजा विभो, केवल मुझे ही नहीं, आपने क्या किया, मेरे बच्चों को भी आपने बचाया। मैं, मेरे पास, मेरे ऊपर ज़्यादा आपकी कृपा है, क्योंकि देवकी के बच्चों को आपने नहीं बचाया। दूसरी बात क्या है कि त्वयैव नाथेन मुहुर् विपद घणात्, मुहुर् विपद घणात। देवकी का खाली एक ही दो तकलीफें थी, उनको दूर किया, लेकिन मेरे इतने सारे तकलीफें मेरे जीवन में, बचपन में तकलीफ ही तकलीफ ही आया, हर समय आपने मुझे ही बचाया। ये मेरी विशेषता है, मेरे ऊपर आपका विशेष अनुकंपा है। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं, या कहती है, आपने मेरे ऊपर ज़्यादा अनुकंपा क्यों दिखाया, क्योंकि त्वयैव नाथेन, त्वयैव नाथेन का अर्थ क्या है, आपको ही मैंने नाथ मान के रही हूँ। आप देवकी के पुत्र के रूप में जरूर प्रकट हुए, लेकिन आप पुत्र होने पर भी आपने देवकी को इतना ज़्यादा कृपा नहीं किया जितना मेरे ऊपर किया। क्यों? क्योंकि देवकी का नाथ जीवित है, वसुदेव है, लेकिन मेरे लिए तो कोई और नाथ है ही नहीं आपके अलावा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने आपको ही नाथ के रूप में मान के बैठी हूँ, इसलिए आपने मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा बरसाया। इस प्रकार कुंती महारानी इन श्लोक में कहती है। तो आज का ये श्लोक है विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद, उस श्लोक से हम चर्चा करेंगे। अभी पिछले श्लोक में आप देखे होंगे मुहुर् विपद घणात्, मुहुर् विपद घणात् मतलब बहुत सारे बार बार विपद आए, बहुत आए, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ों को देव और कुंती महारानी कहती हैं, कुछ विपदों को उल्लेखन कर रही है। क्या है? सबसे पहला विपद विशान महाग्ने, विष, सबसे पहला विष। जहर दिया गया था भीम को, पांडवों को भी जहर खिलाया गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि जहर के लड्डू खिलाए गए थे, कुछ लोग बोलते हैं जहर का दूध पिलाया गया था। कुछ भी हो, लड्डू या जबर जहर दिया गया था, कोई कुछ एडिशन महाभारत में कुछ इस प्रकार है, कुछ महाभारत में अलग प्रकार है। तो दुर्योधन ने बहुत बड़ा फीस्ट के लिए पांडवों को बुलाया था, तब उसके अंदर जहर डाल के दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बड़ा सुंदर योजना से कि वो बच गए। तो श्री कृष्ण ने याद दिलाया, तो ये तो बड़ा फीस्ट है, लेकिन जाके भीम के कान में कहा, ज़्यादा लालची मत बनना, ध्यान रखना वो कौन दे रहा है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो भीम को तो खाने में मजा आ रहा था, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा कि थोड़ा वो शांत हो गए, इसलिए उन्होंने खाया नहीं, तो विष से बचाया। विशान महाग्ने, महाग्ने, महाग्ने आप जानते हैं, लाक्षाग्रह में अग्नि में जला दिया, जलाने का प्रयास किया गया था, तभी भी कृष्ण ने उनको बचाया, लाक्षाग्रह से बचाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, पुरुषाद अदर्शनात्, अनेकों अनेकों जो राक्षस है उन लोगों से भी कृष्ण ने बचाया। असत सभाय, असत सभा मतलब द्रौपदी हरण करना, वस्त्र हरण करना, और जो जुआ का जो खेलना, ये सब सभा में हुआ, ये असत सभा थी, उसमें भी भगवान ने उनको बचाया। असत सभाय वनवास कृच्छतः, वनवास में अनेकों अनेकों बहुत तकलीफों को सहना पड़ा, इन सारे कार्यों से, सारे चीज़ों से उन्होंने बचाया। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, तो वनवास के बाद युद्ध हुआ, युद्ध में बड़े बड़े महारथ आए, उनमें से भी कृष्ण ने उन सबको बचाया, हमको बचाया। महारथास्त्र तो रथास्त्र तो द्रौम्यस्त्र, युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौम्य अश्वत्थामा ने अभी ने अभी अभी उन्होंने ब्रह्मास्त्र को फेंका था, तो उससे भी आपने मुझे बचाया, हमको बचाया। द्रौम्यस्त्र तस्चास्म हरे हे अभिरक्षिता, आपने रक्षा किया। कैसे रक्षा किया? स्वयं हमारे सामने प्रकट होके रक्षा किया। तो भगवान किस प्रकार भक्तों को रक्षा करते हैं, अस्तित्व में भगवान के अनेकों अनेक लीला में रक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण लीला, हाउ ही प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज, अपनी भक्त वात्सल्यता। ऐसे महाभारत की घटनाएं, ये सब चीज़ें, महाभारत में पांच विषय वस्तु हैं, जैसे भगवद्गीता की पांच विषय वस्तु है, तत्व विषय वस्तु है, महाभारत में भी पांच विषय वस्तु है। सबसे पहला है कर्ण की दानशीलता, दूसरा विषय वस्तु है महाभारत का नकुल की समशीलता, तीसरा है युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, और चौथा है कुंती महारानी की अविचलित भक्ति, और पांचवा है भगवान की भक्तवत्सलता। ये पांच महाभारत के विषय वस्तु है, दे फाइव सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ महाभारत। यानी कोई भी कार्य, कोई भी घटना होती है या कोई भी लीला है महाभारत का, वो सारे जितने भी हैं उन सब का सब्जेक्ट, मूल सब्जेक्ट ये पांच हैं। कभी कभी कुछ नैतिक शिक्षा कोई धौम्य पांडवों को देते हैं, या कोई भी कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें महाभारत में, कभी फिजिक्स है, कभी केमिस्ट्री है, कोई अलग अलग प्रकार का शास्त्रों का वर्णन है, भूगोलिक शास्त्र का वर्णन है, भले ही कितना भी कुछ भी क्यों ना, तो सबसे महत्वपूर्ण है पांच विषय वस्तु। ये पांच विषय वस्तुओं में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो है भगवान की भक्तवत्सलता। और भगवान की भक्तवत्सलता का इधर कुंती महारानी वर्णन कर रही है, आप हमारे ऊपर इतना कृपा किया कि जब जब तकलीफें आए आप स्वयं प्रकट होके हमको आपने बचाया, यू पर्सनली केम। कुंती महारानी अपना सौभाग्य और विस्तार से वर्णन कर रही है। पिछले श्लोक में उन्होंने यही कहा था कि आप बार बार आके हमको बचाए, लेकिन वर्णन दे रही है कैसे कैसे अलग अलग जगह में आके आपने हमको बचाया। तो बचाने के बाद कुंती महारानी एक श्लोक को उच्चारण करती है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, विपद संतुता शास्त्र तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। तो ये श्लोक कुंती महारानी क्यों उच्चारण कर रही है? कुंती महारानी ऐसे बुआ हैं, आप सबको मालूम है, और बड़े बुद्धिमान हैं, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अभी कुंती महारानी कहते हैं कि आप अभी जा रहे हो ये सोच के जा रहे हो कि हमारी सारी समस्या दूर हो गई, हाँ सब कोई तकलीफ नहीं है, खत्म हो गया। कुंती महारानी कहती हैं नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तकलीफें दूर होगी, कष्ट दूर हो गया, अब ये सब शांत हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, नहीं, मैं चाहती हूँ तकलीफ वापस आए, क्योंकि विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, आप जगत के गुरु है ना, जगत के गुरु होने के नाते मेरे भी गुरु हो, आपने एक बड़ा सुंदर शिक्षा दिया, ये वनवास में महाभारत युद्ध में अभी भी प्रत्यक्ष, अभी में हमने जो लीला देखा उस सब समय आपने हमको एक शिक्षा दिया, खास करके मुझे एक शिक्षा दिया, मेरे द्वारा सारा जगत को शिक्षा दिया। कुंती महारानी कहती है मेरे द्वारा सारा जगत को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? क्योंकि जब जब दुख होता है, जब तब तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तब आप स्वयं प्रकट होते हो, आपका दर्शन होता है, और जैसे आपका दर्शन होता है, जो भवसागर से पार करना यानी भौतिक जगत का जो सारे कष्ट है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम, वापस पुनर्भौतिक जगत को दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहते हैं कि मेरे जीवन में और दुख आए ताकि आपका दर्शन हो, क्योंकि दुख के समय में आप आते हो ना, सुख के समय आप आते नहीं हो, लेकिन वास्तविक सुख क्या है? आपका दर्शन है। ऐसा वो अच्छा परिस्थिति के क्या फायदा, वैसा जो सुखमय, ऐसा जो भौतिक सुख का क्या फायदा जिसमें आपका दर्शन ना हो। इससे अच्छा है कि हमारे जीवन में और दुख आते रहे। विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम, भवतो दर्शनम मतलब आपका दर्शन होने मात्र से हमको ये न पुनर्भव दर्शनम, वापस हमको भौतिक जगत में, भौतिक जगत को दर्शन करने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड बाई एनी वन ऑफ द नाइन डिवोशंस इज ऑलवेज ए फॉरवर्ड स्टेप ऑन द पाथ ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड। भवतो दर्शनम, इफ समवन इज लक्की एनफ टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड बाई डिवोशनल सर्विस इट इज ऑल गेन। सबसे बड़ा फायदा हमारे जीवन में यह है कि भगवान का स्मरण, और सबसे बड़ा नुकसान है कि भगवान की विस्मृति। दुखों के समय भगवान का स्मरण होता है तो वो दुख अच्छा है, और सुख के समय भगवान की विस्मृति होता है वो सुख सबसे बड़ा दुख माना जाता है, सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। इसलिए कुंती महारानी को ये श्लोक की वजह से कहा गया है, महाभारत में सब्जेक्ट है, क्या है वो उनके विषय में, अविचलित भक्ति। इतना सारा दुख आया कुंती महारानी के जीवन में, लेकिन फिर भी कुंती महारानी का भक्ति जो है वो कभी भी विचलित नहीं हुआ। भगवद्गीता में शुरुआत में भगवान इस बात को कहते हैं, जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो उसको कैसे उसको सामना करना चाहिए। भक्त के जीवन में जब दुख आता है, भगवान को कहना चाहिए इस भक्त को, हे भगवान, मेरे कर्मों में बहुत सारा और दुख रखा था लेकिन आपकी कृपा से कम हो गया है। जब मान लो सुख आता है तो उस समय भक्त को क्या करना चाहिए, हे भगवान, मेरे कर्मों में कोई इस प्रकार का सुख नहीं है लेकिन आपकी कृपा से और सुख मिला है, ताकि मुझे आपकी और सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी अपने भगवद्गीता के तात्पर्य में लिखते हैं। वैसे देखा जाए सुख और दुख ये दोनों जीवन में निश्चित रूप में आने वाला है। या कोई सुखी है अभी, चिंता मत करो दुख आएगा। अगर कोई दुखी है, चिंता मत करो सुख आएगा। तो ज्यादा न प्रावृषेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थितम। और जब सुख आता है एकदम बिल्कुल एकदम आनंदित होना, कुदरा नाचना, या दुख आता है तो एकदम बिल्कुल बैठ के मनुष्य चरा लेके बैठ जाना, ये ठीक नहीं है। दोनों समय में समान भावना बना के रखना बहुत आवश्यक है। सुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध सिद्धिर मुनि रुच्यते। भगवद्गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध। भगवद्गीता में प्राय शुरुआत में बीच में अंत में इसी बात को वर्णन किया गया है, ये भौतिक सुख और दुख को कैसे हमको देखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इधर कुंती महारानी सबसे बड़ी शिक्षा देती है भौतिक सुख और दुख को कैसे देखना चाहिए। अस्तित्व में वास्तविक सुख क्या है, भगवान का दर्शन। और भगवान का दर्शन कब होता है, जब दुख आता है। इसलिए विपदा संतुता शश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन करने मात्र से वापस भौतिक जगत में दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कुंती महारानी चार श्लोकों में वर्णन करती है, कौन है वो व्यक्ति आपको दर्शन नहीं कर सकता। यानी एक भगवान की दर्शन करने की अयोग्यताओं को वर्णन करती है। मैं तो योग्य हूं, आपका दर्शन मैंने किया है और आप भी जा रहे हो, क्या मैं अयोग्य हूं आपके दर्शन के लिए? मेरे पास क्या इस प्रकार का गुण है, अयोग्यता है? नहीं है। तो अयोग्यताओं को वर्णन करती है। सबसे पहला श्लोक में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री यदमान मदपुमान नैवार्यत्यभिधा तुम वै त्वामकिंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर येदमान मदपुमान, चार चीजें हैं। जन्म, ऊंचे परिवार में जन्म लेना। दूसरा है ऐश्वर्य, बड़े ऐश्वर्यवान होना, बहुत धनाढ्य होना। श्रुत, बहुत पढ़े लिखे होना। और चौथा है श्रीभिर, बहुत सुंदर होना। ये चार चीजें के वजह से क्या होता है, येदमान मदहा, मदहा, मद मतलब क्या है, अहंकार, अहंकार उत्पन्न होता है, मद अपमान। तो वो अहंकार जो है उसके लिए ना एवार हति, अयोग्य बना देता है उसको, ना अर्हति। अभिधा तुम वही, किसके लिए अयोग्य बन जाता है, अभिधा तुम, अभिधा तुम का अर्थ है कि भगवान की नामों को उच्चारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है, ये अयोग्य बन जाता है। क्यों, इसका मतलब क्या, धनी व्यक्ति अयोग्य है भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए? क्या कोई विद्वान व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण का योग्य है? नहीं। भगवान का नाम का उच्चारण करने के लिए अयोग्यता क्या है, अहंकार। बड़ा सूक्ष्म विचार है ये, ध्यान में रखिए कि बड़े ऊंचे परिवार में जन्म लिया तो भगवान का नाम लेने के लिए योग्य नहीं बनता है वो। बड़े सुंदर होने से भगवान का नाम लेने के लिए योग्य नहीं बनता, नहीं, ये सुंदरता के वजह से या धनाढ्य परिवार में जन्म लेने मात्र से, धनी होने से जो उससे उत्पन्न हुआ जो अहंकार की वजह से वो, देखिए एक होना मेरे पास धन है, ये अज्ञान नहीं है, मैं धनवान हूं ये अहंकार है। थोड़ा सा विचार कीजिए, मैं मेरे पास सुंदरता है लेकिन मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं मतलब क्या है, अहंकार, आई एम। तो समस्या जो है सुंदरता में नहीं है, विद्वत्ता में नहीं, समस्या धनी होने में नहीं है, समस्या उच्च कुलवार जन्म लेने में नहीं है। समस्या यह है कि जब इन चीजों के साथ अपने आप को पहचानते हैं, कोई अच्छा बहुत अच्छा गाता है, मैं अच्छा गाऊंगा, मैं अच्छा गाना चाहता हूं, मैं अच्छा गा रहा हूं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या किसमें है, मैं अच्छा गायक हूं मैं मैनेज कर रहा हूं से बहुत सारे कार्य अच्छा कर रहा हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। भगवान के लिए अच्छा करना चाहिए, है कि नहीं, कोई भी कार्य लेते हो अच्छा करना चाहिए, लेकिन मैं मैनेजर हूं ये समस्या है। पिता का कार्य करना पुत्र के लिए, पिता का रोल निभाना, उसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छी करना चाहिए, उनका कर्तव्य है, लेकिन यह सोचना मैं पिता हूं यह समस्या है। ये जो अहंकार इस प्रकार है कि ये अपना जो अहंकार से वजह से उत्पन्न हुआ जो कार्य है वो कार्य करने में भी रुकावट पहुंचाती है। अगर कोई पिता सोचे कि मैं पिता हूं तो वो पिता का कर्तव्य नहीं कर पाएगा। अगर वो सोचे कि ये मेरा पुत्र है तो मेरे कुछ कर्तव्य है, कर्तव्य करना है करके सोचता है, वो कर लेता है। अगर मान लो कि कोई सोचे कि मेरे पास धन है उसका सदुपयोग करूं तो उस पर कोई अहंकार नहीं आएगा। अगर वो सोचे मैं धनी हूं तो उनको तकलीफ होता है, क्या तकलीफ होता है, अगर मैं धन दे दूंगा तो मेरा पदवी जो है धनी का, धनवान का पदवी, वो निकल जाएगा, वो खो जाएगा, है कि नहीं। हाँ पता नहीं, ये तो भागवत का क्लास है लेकिन फिर भी थोड़ा सा, आपने से पता नहीं कितने लोगों ने कल वो चिल्ड्रंस डे का स्पीच सुना है मोदी का। मैं सुना है। अच्छा लगता है उनका स्पीच, क्योंकि वो भागवत से कुछ भिन्न नहीं बोलते, अलग से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते भागवत, भागवत का आधार है, लेकिन जो श्लोक वोक नहीं निकलता है लेकिन उसका आधार भागवत है। कोई भी चीज लेके आए मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, उसका आधार भागवत है। तो उन्होंने कहा था कि आप कोई चीज, कोई व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, क्या प्रयास करो, करने का प्रयास करो। बच्चों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था, अगर समय मिलता है तो वो भी सुन लीजिए प्रवचन भी। मैं उसको कहता हूँ प्रवचन, कोई ऐसा स्पीच नहीं हो, प्रवचन है, बहुत अच्छा प्रवचन है, एक एक पॉइंट ऐसा सुंदर तरीके से बताया, बड़े हमारे लिए भी शिक्षा, बहुत सारे शिक्षाओं को प्राप्त होती है। नई बात कहा, अगर बनने का प्रयास करोगे तो अगर नहीं बना तो जीवन भर पछताओगे। जैसे माता पिता बच्चों बोलते हैं, बच्चों बोले तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तो बेचारा बड़ा होने के बाद एडमिशन नहीं मिला डॉक्टरी के लिए या इंजीनियरिंग में कहीं एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर वो करने के लिए बोले तो बेटा तुम करो, वो जो बनता है उससे संतुष्ट होता है। अब देखिए आज तक ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हुआ है जो इस प्रकार की बातें कहे, है कि नहीं। उसका केवल एक ही कारण है, उसके ऊपर संतों का कृपा है। ये यही बात है इधर, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर येदमान मदह, मदह मतलब अहंकार। तो अहंकार जिसका है वो ना अर्हति अभिधातुम, सरल कार्य है भगवान का नाम उच्चारण करना, इसके लिए भी अयोग्य हो जाता है। क्यों अयोग्य होता है, वो जब मंदिर में कहीं भी आ जाता है कोई, आप लोग बड़ा पॉलिटिशियन बुलाओगे तो उसका अहंकार की वजह से सब लोग कीर्तन कर रहे, तो सोचेगा अगर मैं भी करूंगा लोग क्या सोचेंगे, मैं प्रणाम करूंगा लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कभी पॉलिटिशियन को बुलाओगे, बड़े अहंकारी व्यक्ति को बुलाओगे भगवान के सामने, ऐसा ऐसा करेंगे।
बाकी लोग भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं करता है वो, हाँ देखते हुए भी नहीं करता है वो, झुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार नैवार यति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हे भगवान आप कौन हो? अकिंचन गोचरम, अकिंचन गोचरम, आप उन्हीं व्यक्ति के गोचर हो, उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होते हो जो अकिंचन है। क्योंकि ये चार चीजें जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये चार चीजें इस भौतिक जगत में हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो अस्तित्व में ये जो चार चीजें जो उसको हम सुरक्षा मान के बैठे हैं वही हमारा बड़ा डेंजर है। क्यों, क्या डेंजर है? क्योंकि वो हमको अहंकार उत्पन्न कराता है। वो अहंकार के वजह से जो वास्तविक सुरक्षा जो भगवान है उनकी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति ही एकमात्र हमारा साधन है, भगवान ही एकमात्र आश्रय है। वो भगवान की आश्रय से दूर कराने वाली अहंकार है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं ये जो चार चीजें जो हैं ये जिससे अहंकार उत्पन्न होता है ये दुर्भाग्य है। अंततः लोग क्या सोचते हैं? ये बड़ा भाग्यवान है। क्यों? मतलब बड़ा धन्यवान है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा भाग्यवान है, इन चार चीजों को भाग्य माना गया है। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं ये चार चीजें वास्तविकता में दुर्भाग्य है। तो तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर ये चार चीजें जन्म ऐश्वर्य ऊंचे कुल में जन्म लेना अगर दुर्भाग्य है, धनी होना दुर्भाग्य है, तो क्या करें? तब उसका समाधान यह है, अगर दुर्भाग्य से कोई धनी है उस धन को भगवान की सेवा में लगाए। अगर दुर्भाग्य से पढ़ा लिखा है कोई क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, दुर्भाग्य से कोई पढ़ा लिखा सच में जिसका बड़ा दुर्भाग्य वही लोग स्कूल जाते हैं सब पढ़ना पड़ता है शांति से घर बैठ के गीता भागवत पढ़ ले, थोड़ा सुन ले, रामायण महाभारत सुन ले, वो नहीं। तो अगर दुर्भाग्य से कोई सुंदर है, दुर्भाग्य से कोई जन्म ऐश्वर्य श्रुत बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया है या श्रुता पढ़ा लिखा है तो क्या करना चाहिए? उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाया तो वही चीजें उनको अहंकार का कारण बनता है। तो इसलिए त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन शब्द को इस्तेमाल किया, अकिंचन मतलब वो व्यक्ति जिनके पास कोई भी चीज नहीं है या कोई भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। देखिए कोई वस्तु या धन नहीं होना या होना वो मतलब नहीं है, मतलब है आसक्ति। अकिंचन व्यक्ति वो है जिनके पास कोई चीज के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कर्म जो है वो बंधन का कारण है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति बंधन का कारण है। कुछ लोग सोचते हैं कि परिवार बंधन का कारण है। नहीं, परिवार बंधन का कारण नहीं है, परिवार के प्रति आसक्ति बंधन का कारण है। कुछ लोग सोचते हैं धन बंधन का कारण है, ये बंधन का कारण है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इस संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो आपका बंधन का कारण है। हमारा जो आसक्ति है उसके प्रति वही हमारा बंधन का कारण है, इट इज माई अटैचमेंट। इसलिए अनासक्त से विषयान यथार्थ उपयुञ्यतः निर्बंधन कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। रूप गोस्वामी पाद भक्तिर सामर सिंधु में इस बात को कहते हैं अनासक्तस्य विषयान, अनासक्तस्य विषयान यथार्हो उपयुञ्जतः, अपनी अपनी योग्यता अर्हता के अनुसार भगवान की सेवा में लगाना, ये वास्तविक वैराग्य है, वास्तविक अकिंचन वो है। तब आगे नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपते नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान कौन है? अकिंचन वित्ताय, अकिंचन के धन है, अकिंचनों के धन है। या भगवान अकिंचनों को धन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति अपना धन को कैसे सुरक्षित रखता है, लेकिन बहुत धनी व्यक्ति है उसके पास बहुत सारा धन है और धन के प्रति आसक्त भी है, उसको कैसे रखता है? बहुत एकदम संभाल के रखता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उस प्रकार सुरक्षित रखते हैं। अकिंचन वित्ताय, वित्ताय मतलब क्या है? धन। वित्त मतलब धन, अकिंचनों को धन के रूप में अपना धन मान के भगवान जीवन यापन करते हैं, या भगवान का पूरा जीवन इसी प्रकार चलता है। ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि भगवान का ये लीला है। क्या है वो? अकिंचनों को अपना धन मान के रहते हैं। निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये का अर्थ क्या है? निवृत्त गुणवृत्तये, क्योंकि पूर्ण तरीके से ये जो भौतिक धन से निवृत्त हो चुके हैं, गुणवृत्तये गुणों की वृत्ति से परे हो चुके हैं, या गुणों की वृत्ति से परे वस्तुओं को स्वीकार करते, क्योंकि भगवान जो गुणों से परे है, निवृत्त गुणवृत्तये। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। गुणों से परे या गुणों से संबंधित गुणवृत्तियों का निवृत्त है, यानी उससे निवृत्त हो चुके हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, ये निवृत्त गुणवृत्ति थोड़ा सा समझना चाहिए। निवृत्त गुणवृत्ति का अर्थ है गुणवृत्तियों से जो निवृत्त हो चुका है उसको अकिंचन कहा गया है। वैसे जो अकिंचन है वो भगवान की संपत्ति है। तो भगवान ऐसे भक्तों को कैसे संभालते हैं, इसका वर्णन किया गया आत्मा रामाय। आत्मा रामाय का अर्थ क्या है? वो कृष्ण जो है पूर्ण तरीके से आत्मा राम है, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज की आवश्यकता होने पर भी भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं कि भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मेरे हैं। जिसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, वो कभी ये नहीं कहता मेरा है मुझे चाहिए, क्योंकि उसको कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आत्मा राम आया, आत्मा राम होने पर भी दो कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड, ही फील्स डिपेंडेंट ऑन हिज डिवोटीज। भक्तों के ऊपर अपने आप को निर्भर समझते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे अकिंचन भक्त हैं वो मेरे हैं, उनके बिना मैं कैसे जीऊं। आत्माराम मतलब जो आत्मा में ही रमता है उसको आत्माराम कहा जाता है। उनको कोई और चीज की और वस्तु की आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए या जीने के लिए, आनंद को अनुभव करने के लिए उनको कोई और वस्तु की आवश्यकता नहीं। कृष्ण को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं होने पर भी भक्तों का प्रेम इतना महान है कि भगवान क्या सोचते हैं, उनके बिना मैं कैसे जीऊं। मान लो कि वो भक्त कोई गलती कर देता है, फिर भी शांताया ये शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि भगवान जो है भक्त, जैसे कई माता पिता सामने बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, फिर भी क्या है शांताया, उनको संभाल के रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है। ही विल नॉट गिव इट अप। ऐसा नहीं कि ठीक है तुमने गलती किया गेट आउट, मान लो गेट आउट बोल भी दिया तो बाद में तुरंत शांत हो जाते, नहीं बेटा ठीक रहना, उसको संभालने के लिए बहुत नाना प्रकार का कर देते। कभी कभी माँ बोल देती है निकल जाओ घर से निकल जाओ, तो बाद में चेहरा देखना चाहिए उस माँ जो है, आओ बेटा बैठ के खाओ, क्या क्या कर देते, कहीं चले ना चाहिए कि नहीं। तो शांत आया लास्ट वेपन है। एक बार माँ ने या पिताजी ने बोल दिया गेट आउट, उसके बाद प्रेम देखना चाहिए माता पिता के बच्चे के प्रति बढ़ जाता है। तो शांत आया कैवल्य पते नमः। कैवल्य पते नमः इसका अर्थ क्या है? तो भक्तों को मान लो कोई तकलीफ हो रहा है, अपनी भक्ति में भी तकलीफ हो रहा है, भगवान स्वयं आके पतये नमः, एक जैसे पति पत्नी को मदद करते हैं, हर चीज में मदद करते हैं। कुछ तकलीफ होता है उस समय में जरूर निश्चित रूप में रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि नमो अकिंचन वित्ताय, इन ऐसे अकिंचनों को भगवान जो हैं, एक धनी व्यक्ति धन को देखभाल कैसे करता है उस प्रकार देखभाल करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपना मान के रहते हैं, गलतियां भी होता है तो उसको माफ कर देते हैं, शांत रहते हैं, और अंततः कैवल्य पतये नमः, एक पति पत्नी जिस प्रकार पति पत्नी को देखभाल करते हैं, उसी प्रकार भगवान जो है हमारे अकिंचन भक्तों को इस प्रकार देखभाल करते हैं। जो समस्या ये है कि अहंकार जिसके पास नहीं है, नम्रता है, भगवान ऐसे भक्त को इसे प्रेम से देखभाल करते हैं। आगे के श्लोक में
मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मितकली।
तो कुंती वाणी कहती हैं मन्ये त्वाम कालमीशानम, काल के रूप में भगवान क्या करते हैं, सबको नाश करते हैं। किसको नाश करते हैं? भगवान है, भगवान ने क्या कहा, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर द वर्ल्ड, मैं काल हूं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध हो, हे अर्जुन मैं काल हूं और लोकक्षय कृत प्रवृद्ध हो, सारे लोक को समाहर तुम सबको मारूंगा, लेकिन तुम पांडवों को छोड़ के। भगवान काल के रूप में सारा जगत को नाश करते हैं लेकिन भक्तों को रक्षा करते हैं। कुंतीवाणी कहते मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभूम, अनादि निधनम विभूम, अनादि निधनम विभूम करके ये काल जो है उसका आदि नहीं है और उसका अंत नहीं है। अनादि निधनम विभूम, विभूम मतलब ये काल महान शक्तिशाली है। समम चरंतम सर्वत्र, समम चरंतम सर्वत्र सारे लोगों को एक ही तरीके से देखती है। भूतानाम यन्मितकलिही, भूतानाम यन्मितकलिही, मितक कलिही, लेकिन लोग भूतानाम आपको कलिही आपकी तत्व को नहीं जानते, दे डोंट नो द रियलिटी अबाउट यू। वो लोग सोचते हैं कि आप भी एक साधारण सा पुरुष हो। इससे कुंती महारानी इस श्लोक में काल के विषय में कहती है मन्ये त्वम काल में आई कंसिडर यू द लॉर्डशिप टू बी इटर्नल टाइम द सुप्रीम कंट्रोलर विदाउट बिगिनिंग एंड एंड द ऑल परवेसिव वन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मर्सी यू आर इक्वल टू एवरीवन द डिसीजन बिटवीन लिविंग एंटिटीज आर ड्यू टू सोशल इंटरकोर्स। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भूतानाम यन मितक कलिही, मितक कलिही कहते मिथ्या मितः ये शब्द के द्वारा कुंती वाणी कहते हैं लोगों को आपके बारे में गलत धारणा है। आप सबको समान दृष्टिकोण से देखते हो लेकिन लोग सोचते हैं कि आप पक्षपात करते हो। आप सबको मालूम है ये जो सब्जेक्ट है पक्षपात करते, भगवान पक्षपात करते हैं, ये भागवत का सातवां स्कंध का सब्जेक्ट है। भागवत का सातवां स्कंध का पहला अध्याय जो है उसका नाम है द लॉर्ड इज इक्वल टू वन एंड ऑल, भगवान सबके लिए समान है। ये बात तब आया जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, छठे अध्याय में आप सब देख जानते हो इंद्र ने कितना गड़बड़ किया था, इतना सारा गड़बड़ किया लेकिन हमेशा इंद्र जीतता आया। दूसरी ओर देखेंगे सारे असुर परिवार में जलने सब मर गए। भगवान ने इंद्र का पक्ष लेके हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मार दिया, ऐसा छठे स्कंध में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। बाद में भी देखें छठे स्कंध में अनेकों अनेकों जगह वृत्तासुर, भगवान का इतना महान भक्त, दूसरा और इंद्र, कौन जीत किसको जिताया भगवान ने? इंद्र को जिताया, लेकिन कितना गड़बड़ किया था इंद्र। एक और इंद्र दधीचि को मारना चाहता था और भगवान ने इंद्र को कहा जाओ दधीचि के पास जाके अपनी हड्डी लेके आओ। ये सब बातें सुन के परीक्षित महाराज बहुत कंफ्यूज हो गए, क्या कृष्ण क्या समान है कि क्या है? एक और बोलते हैं वाह कितना महान है वृत्तासुर, इतना महान भक्ति किया लेकिन उनको हरा दिया। दूसरी ओर क्या है, दधीचि इतने महान सिद्ध पुरुष है लेकिन इंद्र की राज्य के लिए इतना सिद्ध पुरुष का शरीर को नष्ट करा दिया। ये सच में क्या है, भगवान उनका मति ठीक है कि नहीं? सब शास्त्र कहता है संभावना है, ये कैसे है? तो उन्हें प्रश्न पूछा, तब सुखदेव गोस्वामी उसका जवाब देते हैं। जवाब देते हुए कहते हैं कि भगवान सबके लिए समान है, ये हमारी मिथ्या है, हमारा आंखों में दोष होने की वजह से भगवान पक्षपात करते हैं, इस प्रकार हम विचार करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारा तत्व सुनाया प्रकृति के जो तीनों गुणों का प्रभाव की वजह से हम सोचते हैं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं लेकिन भगवान सबके लिए समान है। तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद से प्रश्न पूछा, तो युधिष्ठिर नारद का संवाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूरा सातवां स्कंध जो युधिष्ठिर नारद संवाद है। युधिष्ठिर नारद संवाद की वजह से वो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को जो नरसिंह लीला सुनाया। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ में बहुत घटना देखी, सब लोगों ने देखा, क्या घटना था, भगवान ने शिशुपाल को वध किया। लेकिन जैसे शिशुपाल को वध किया तो शिशुपाल की जो आत्मा है वो भगवान में लीन हो गया, मुक्ति प्राप्त हुआ, सब लोगों ने देखा। तब युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी खड़े थे, नारद जी से पूछा, ये क्या है? एक और हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुनि लोग हैं, बड़े बड़े योगी लोग हैं, इतना साल तपस्या करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता है वो शिशुपाल को प्राप्त हो गया मुक्ति। दूसरी ओर जो भगवान का निंदा करता है उनको तो तुरंत कुष्ठ रोग हो जाना चाहिए, जिह्वा जो है कुष्ठ रोग से भर जाना चाहिए, लेकिन इतना निंदा करने के बाद भी वैसे व्यक्ति को भगवान ने मुक्ति दिया। तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अगर ऐसा कोई सिस्टम है भगवान को निंदा करने से मुक्ति मिलता है ये कोई सिस्टम है क्या? अगर मान लो है भी, वेण ने भी भगवान को निंदा किया था, वेण ने भी भगवान को निंदा किया था, उनको तो नरक मिला और शिशुपाल को तो आदत था, बचपन से आदत था, उनको कुछ और कुछ सोचता ही नहीं था, भगवान का ही निंदा करता था। उसका जवाब देते हुए नारद जी कहते हैं, हे नारद सुनो, हे युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उचित है। शिशुपाल ने निंदा किया भगवान का और वेण ने भगवान का निंदा किया था, वेण को नरक प्राप्त हुआ क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो भगवान को निंदा करता है वो उसको नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन शिशुपाल का निंदा कुछ स्पेशल था, शिशुपाल जो है दिल से गाली दे रहा था 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कर रहा था, भाव युक्त भाव से युक्त होकर गाली दे रहा था। तो भले उन्होंने निंदा किया लेकिन जो कृष्ण के प्रति ये जो 24 घंटा जो स्मरण है उस निंदा का जो दुष्फल है उसको शांत कर दिया है, इसके वजह से शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुआ। तो बात यह है कि भगवान यही देखते हैं कि कितना उस भक्त का, उस जीव का उनके प्रति आसक्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये मत सोचे भगवान जो है सबके लिए समान है, इसका अर्थ यह है कि सबके साथ समान दृष्टिकोण, समभाव, मतलब सबके साथ एक ही व्यवहार करते हैं। समता जो है इस प्रकार समझना चाहिए, कैसे माँ है, अगर आप किसी के घर में जाओगे, माँ जो है एक बच्चे को खाली दूध पिला दिए, एक बच्चे को पूरा पराठा पनीर वो सब बना के खिला रही है, एक बच्चे को खिचड़ी खिला रही है, ये कितना भेदभाव करती है माँ देखो बच्चों में। लेकिन वास्तविकता ये है, एक तो शिशु है छोटा उसको तो दूध ही देंगे, और एक जो है हट्टा कट्टा है 8-10 साल का बालक है उसको तो एकदम बिल्कुल भरपूर बना के खिलाएगी स्वादिष्ट चीज़ें। उससे बड़ा लड़का है 13-14 साल का लड़का है उनके घर में, लेकिन वो बीमार है, उसको खिचड़ी खिलाएगी ना तो समता जो है कार्य में नहीं है, समता जो है भाव में है। इसलिए लोग सोचते हैं ये समान, खास करके मंदिर में आते रहे, थोड़ा एक बता रहा हूँ क्योंकि इस बार भूताना मिथक कली समम चरंतम ये शब्द के ऊपर चर्चा चल रही है। जन्माष्टमी जो लोग आते हैं ना आके बोलते हैं मंदिर में भी सबका भेदभाव होता है क्या हमको अभिषेक में क्यों नहीं भेजते हो हमको इधर क्यों नहीं भेजते हो, उनके लिए अलग लेने हमारे लिए अलग लेने, ऐसा क्यों है, मंदिर में सबको समान होना चाहिए तो ये समता समझना ये तभी हो सकता है जब कोई विद्वान हो, विद्वान ही ये समान की समता की वास्तविकता को समझ सकता है। तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, इन भूतानां मिथक कलिः, लोगों की जो मिथ्या समझ के वजह से ही लोग आपके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। काला का मन्यत्वाम कालमीशानम अनादि निदम मिदम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन मिथक कलिः। उसके बाद नवेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तैव मानस्य नाम विडम्भनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कश्चित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्निनाम। फिर उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कुंती महारानी कहते हैं न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, कोई भी प्राय कोई भी आपके जो चिकीर्षितम आपकी जो कार्यकलाप है कोई जान नहीं सकता। तयेव मानस्य नृणाम विडम्बनम, तयेव मानस्य नृणाम विडम्बनम, जब आप खास करके नृणाम ये पुरुष जन्म में या मनुष्य रूप में आते हैं, विडम्बनम लोगों को मोहित कर देते हो आप, विडम्बनम कन्फ्यूज कर देते हो। न यस्य कश्चित दयितोस्ति कर्हिचित, आपके लिए दयित आपके लिए प्रिय क्यों कोई नहीं है, न द्वेषस्य आपके लिए कोई कोई व्यक्ति से आप द्वेष नहीं करते हो। यस्यस्मिन् विषमा मतेर नृणाम, लोग केवल ये सोचते हैं ये विचार करते हैं ऐसा उनके मन में ऐसा है आप पार्शियल हो। आप पार्शियल मतलब आप एक दूसरे के बीच में भेदभाव करते हो, लेकिन कभी भी आपके मन में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है, आप सबको समान दृष्टिकोण से देखते हो। जैसे एक भक्त होता है एक भक्त को आप प्रेम करते हो, एक अभक्त होता है उनको भी आप प्रेम करते हो। कैसे? काल रूप में आके प्रेम करते हो, काल रूप में आके उनको नाश करते हो क्योंकि उनको वो चाहिए। वॉट एवर पीपल डिजर्व यू गिव इट, लोगों का केवल ये भ्रम मात्र है कि आप पक्षपात करते हो। तो आगे उसी प्रसंग में, क्योंकि जो सातवां स्कंद का शुरुआत की जो लीला है नरसिंह लीला पहला अध्याय जो है उसके अंदर इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया, वापस उस लीला में जाते हैं। तब शिष्यपाल के इस प्रकार का वध हुआ, नारद जी ने वर्णन करना शुरू किया युधिष्ठिर महाराज को, हे युधिष्ठिर देखो शिष्यपाल का मुक्ति प्राप्त हुआ और वेण को मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ, वेण नरक गया। क्यों गया? क्योंकि शिष्यपाल ने भगवान को निंदा किया, लेकिन कैसे निंदा किया? बड़े पार भावपूर्वक निंदा किया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज वापस प्रश्न पूछते नारद जी से, हे नारद जी आप बताओ कि ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन थे, उनको क्यों मारा गया? तब पूरा वर्णन करते, जय विजय का सब वर्णन करने के बाद अंत में वे कहते हैं कि भगवान जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों कोई और नहीं थे, जय विजय है। बाहर से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये जो शिशुपाल दंतवक्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है भगवान ने उनको मारा, ऐसा सब लोग सोच रहे, भगवान उनके द्वेष करते हैं। अस्तित्व भगवान ने उनको द्वेष नहीं किया। ये कौन है वो लोग हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु शिशुपाल दंतवक्र? वो भगवान के भक्त है, जय विजय है। तो जय विजय होने के नाते सबसे पहला शिशुपाल दंतवक्र रूप में, पहले वहां हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रूप में, बाद में रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, उसके बाद शिशुपाल दंतवक्र रूप में आए, कृष्ण ने उनको मारा। अभी कृष्ण अपने पार्षदों से इतना प्रेम करते हैं कि उनको वापस लेके जाना है। वो कैसे वापस लेके जाएंगे अपने धाम में? तो शिशुपाल दंतवक्र को मार के, शिशुपाल जो है उनका शरीर उनका आत्मा कृष्ण के शरीर में साउज हुआ करके सबको दिखाई पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए शिशुपाल कृष्ण के शरीर में वास किए और वापस जय विजय के रूप में अपने स्थान में वो लोग चले गए। तो बाहर की दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि कृष्ण ने पक्षपात किया, पक्षपात नहीं किया कृष्ण ने, बल्कि ऐसे दिखाई पड़ता है लोगों को कि उन्होंने पक्षपात किया है, उन्होंने फेवरेटिज्म किया है, नहीं। इसकी वजह से भगवान की प्रत्येक जो लीला है न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, भगवान की कार्यकलापों को समझना साधारण चीज नहीं है। साधारण लोग जो है विडम्बनम लोगों को मोहित करा देता है, क्योंकि भगवान के लिए ना कोई अति प्रिय है ना किसी से द्वेष करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, भगवद्गीता में श्लोक आता है। तो कुंती महारानी इस बात को चर्चा कर रही है। तभी ये जो चार श्लोकों तीन श्लोकों में कुंती महारानी ने किस प्रकार लोग भगवान को नहीं जानते उन्होंने वर्णन किया। कौन से चार श्लोक है? जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिर् यदमान मदपुमान नैवार्यत्य विदातुमय त्वाम किंचन गोचरम नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। ಮನ್ನೇ ತ್ವಾಂ ಕಾಲಮೇಶಾನಾಮಾದಿ ನಿಧಂ ವಿದುಂ ಸಂಚರಂ ತಂ ಸರ್ವತ್ರ ಭೂತಾನಾಂ ನಿಮಿತಕ್ಕಲಿಹಿ ನವೇದ ಕಶ್ಚಿತ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೀರ್ಷಿತಂ ತವೇಮಾನಸ್ಯ ನಿಣಾಂ ವಿಡಂಬನಂ ನಯಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ದ್ವೈತೋಶ್ಚಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ದ್ವೇಷಶ್ಚಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಮಾ ಮತಿರ್ ನಿಣಾಂ. ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಯೇ ಜೋ ನಹೀ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಅಯೋಗ್ಯತಾಯೆ ಹೇ ಅಯೋಗ್ಯತಾ ಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ತೋ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಕೋ ಜಾನ್ನಾ ಹೇ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೇ. ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಕಹತೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೇ ಭಕ್ತ ಕಿ ಕೃಪಾ. ಭಕ್ತೋಂ ಕಿ ಕೃಪಾಗೆ ಬಿನಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜೊ ತತ್ವ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಹೇ ವೋ ಕಭಿ ಭಿ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ತೋ ಈ ಅಹಂಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋತಾ ಹೇ ವೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಚತಾ ಹೇ ಕಿ ಮೈ ಜಾದಾ ಜಾನ್ತಾ ಹೂ ಮುಜೆ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ. ಇಸ್ಕೆ ವಜಹ ಸೇ ಉನ್ಕೋ ಭಕ್ತೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಅಹಂಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾ. ಇಸ್ಕೆ ವಜಹ ಸೇ ಉನ್ಕೋ ಭಗವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕಭಿ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ. ಏಕ ಉದಾಹರಣ ದೇತೆ ಹೇ ಜೈಸೆ ಮಾನ್ ಲೋ ಕೋಯಿ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಅಹಂಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇ ಬಡೇ ಕಿತ್ನಾ ಭಿ ಧನಿ ಕ್ಯೋ ನಾ ಹೂ ಕಿತ್ನಾ ಭಿ ಸುಂದರ ಕ್ಯೋ ನಾ ಹೂ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇತನಾ ಅಹಂಕಾರ ಹೋನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ಕೋಯಿ ಭಿ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿತ್ರತಾ ಮಾಡನಾ ನೀ ಚಾಹತಾ ಹೇ ವೋ ಅಕೇಲೆ ರಹ ಜಾತಾ ಹೇ. ಭಲೆ ಕಿತ್ನಾ ಭಿ ಕುಚ್ ಭಿ ಅಚ್ಛಾ ಕ್ಯೋ ನಾ ಹೋ ಅಗರ್ ಅಹಂಕಾರ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಮಿತ್ರ ನೀ ಹೋತೇ. ಉಸ್ಕೆ ವಜಹ ಸೇ ಜಬ್ ಸಾಧಾರಣ ಲೋಕ ಭಿ ಉಸ್ಕಾ ಸಂಗತಿ ನೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೇ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕ್ಯೋ ಜಾಯೆಂಗೆ. ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಶುಡ್ ಗೋಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೌಡ್. ಇಸ್ಲೇ ಅನೇಕೋ ಅನೇಕ ಗುಣೊಮ್ಮೆ ದಿವ್ಯ ಗುಣೊಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸೆ ಮಹಾನ್ ಗುಣ ಹೇ ನಮ್ರತಾ. ಭಲೇ ಕಿತ್ನಾ ಭಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕ್ಯೋ ನಾ ಹೋ ಕಿತನೆ ವಿದ್ವತ್ತಾ ಕ್ಯೋ ನಾ ಹೋ ಕೋಯಿ ಭಿ ಅಚ್ಛಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯೋ ನಾ ಹೋ ಜಬ್ ನಮ್ರತಾ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ತುರಂತ ಉಸ್ಕಾ ವಿಪರೀತ ಗುಣ ಆ ಜಾತಾ ಹೇ ಅಹಂಕಾರ. ತೋ ಅಹಂಕಾರ ಸೇ ಜಬ್ ತಕ್ ಹಮ್ ಬಚೆ ನಹೀ ರಹೆಂಗೆ ತಬ್ ತಕ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಹಮಾರೆ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಗರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಸಹಿ ಜ್ಞಾನ ನಹೀ ತೋ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಗಲತ್ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಾಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವೈಸೆ ಕುಛ್ ನಾ ಕುಛ್ ತೋ ಜ್ಞಾನ ಹೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಗರ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ವಸ್ತು ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಸಹಿ ಜ್ಞಾನ ನಹೀ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಗಲತ್ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗಾ. ಐಸಾ ನಹೀ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಜ್ಞಾನ ಹೀ ನಹೀ ಹೇ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಅನೇಕೋ ಅನೇಕೋ ಜಿತನೆ ಭಿ ಗಲತ್ ದರ್ಶನ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಹೇ ಯಾ ರಾಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ನಿಕಲ್ತೆ ತತ್ವ ದರ್ಶನ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಉನ್ ಸಬ್ ಕಾ ಏಕ್ ಹೀ ಹೇ ಏಕ್ ಹೀ ಬಾತ್ ಹೇ ಕಿ ಸಬ್ ಅಹಂಕಾರ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುವಾ ಹೇ. ಅಹಂಕಾರ ಕೆ ವಜಹ ಸೇ ಯೇ ಸಾರೇ ಜಿತನೆ ಭಿ ಗಲತ್ ದರ್ಶನ್ ಗಲತ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೇ ವೋ ನಿಕಲಾ ಹೇ. ತೋ ಆಗೆ ಕಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಹತಿ ಹೇ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅಜಸ್ಯಾ ಕರ್ತುರಾತ್ಮನಃ ತಿರ್ಯನ್ ಶಿಶುಯಾದುಸು ತದತ್ಯಂತ ವಿಡಂಬನಂ. ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜನ್ಮ ಕಿ ವಿಷಯ ಮೇ ಸಹಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಕೈಸೆ ಜಾನಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ವಿಷಯ ಮೇ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕಹತಿ ಹೇ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಹೇ ವಿಶ್ವಕಿ ಆತ್ಮ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅಜಸ್ಯ ಕರ್ತುರಾತ್ಮನಃ ಆಪ್ ಅಜನ್ಮ ಹೋ ಅಕರ್ತು ಹೋ ಅಜನ್ಮ ಅಕರ್ತೃ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭಿ ಆಪ್ ಜನ್ಮ ಔರ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ತಿರ್ಯನ್ ನಿಶಿಶು ಯಾದುಸು ತದತ್ಯಂತ ವಿಡಂಬನಂ ಆಪ್ ಕಹಾಂ ಕಹಾಂ ಪ್ರಕಟ ಹೋತೆ ಹೋ. ತಿರ್ಯಕ್ ಮತ್ಲಬ್ ಜಾನ್ವರ್ ಕಿ ಯೋನಿಯೋ ಮೇ ಜೈಸೆ ಜಾನ್ವರ್ ಕಿ ಯೋನಿಯ ಮತ್ಲಬ್ ವರಾಹ ಸೂಕರ್ ಸೂಕರ್ ರೂಪ ಮೇ. ತಿರ್ಯನ್ ನಿಶಿಶು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಮೇ. ಯದೂಸು ಮಛಲಿಕೆ ರೂಪ ಮೇ. ತತ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಡಂಬನಂ ಏ ಬಡ ಮೋಹಿತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಚೀಸ್ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ. ತೋ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಏ ಕಹತಿ ಹೇ ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಡಂಬನಂ ವಿಡಂಬನಂ ಕ್ಯೋ ಹೇ ಏ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯೋ ಹೇ. ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಕಹಾ ಗ್ಯಾ ಆಪ್ ಅಜನ್ಮ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಜನ್ಮ ಲೇತೆ ಹೋ ಅಕರ್ತು ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಅನೇಕ ಲೀಲಾಯ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಜಾ ಸಾರೇ ಜೊ ಲೀಲಾಯ ಹೇ ಜನ್ಮ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಹೇ ವೋ ಹೇ ಭಕ್ತೋಂ ಕೋ ಆನಂದ ದೇನಾ ಚಾಹತೆ ಹೋ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಪ್ ಕುಛ್ ಭಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ತಯಾರ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೋ. ಕಭಿ ಜಾನ್ವರ್ ಕಿ ಯೋನಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಲೇತೆ ಹೋ ಕಭಿ ಆಪ್ इसमें मछली के रूप में आते हो, कहीं मनुष्य के रूप में आते हो, कुछ भी करते हो। जैसे आप सब जानते हैं आज वामन द्वादशी है, तो वामन द्वादशी में भगवान ने क्या किया, क्या रूप धारण किया, वामन ड्वार्फ मारे जयदेव गोस्वामी वामन देव को वर्णन करते हुए कहते हैं, चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदक नीर जनित जन पावन केशवद्रीता वामन रूपा जय जगदीश हरे। तो उस स्तोत्र में दशावतार स्तोत्र का स्तोत्र है, चलयसि विक्रमणे, भगवान ने चल किया ही चीटेड। हम सब जानते हैं भगवान जो है सबको समान दृष्टिकोण से देखते, लेकिन इधर स्पष्ट रूप में कहते हैं चला, चल मतलब उन्होंने चीटिंग किया, ही चीटेड। वामन देव के रूप में आके कृष्णा चीटेड। चलयसि विक्रमणे, बड़ा सा विक्रम, क्रम मतलब स्टेप, विक्रम मतलब विशेष रूपेण क्रम, उन्होंने अब बड़ा स्टेप लिया। चलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनक नीर जनित जन पावन उनके जब पैर को ऊपर उठाए थे भगवान ने, क्या क्या हुआ, ऊपर से ब्रह्मांड को छेद किया तो उधर से कारण सागर का जो जल है वो भगवान के चरणों को साफ करते हुए नीचे गिर पड़ा। वो कौन सा है, वो गंगा। इसलिए गंगा को विष्णु पादोदका कहा जाता है, विष्णु के चरण कमल से निकला है गंगा। तो वामन देव का प्राकट है, तो वामन देव के प्राकट के विषय में भागवत में कहा गया, जब वामन देव प्रकट हुए तो ऐसा तुरंत सब लोगों ने, अनेकों अनेकों लोगों ने उनको बहुत सारा गिफ्ट दिया। तो वामन देव अभी उत्तर की ओर चलने लगे, उत्तर की ओर प्रवेश दिशा में चलते हुए नर्मदा तट पे पहुंचे, जहाँ भृगु काचला नामक एक क्षेत्र है, जहाँ भृगु ऋषि के साथ में बैठ के सवा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज। ऐसे बलि महाराज ने पूरा इंद्र की पदवी को स्वीकार कर लिया था, इंद्र को निकाल के वो खुद बैठ गए थे इंद्रासन में, लेकिन फिर भी योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। वामन देव उधर पहुंचे, वामन देव जब पहुंचे उधर, ऐसा वर्णन है भागवत में कि जैसे हजार सूर्य एक साथ आता हो वैसा वामन देव उधर प्रकट हुए। अभी वो जगह अभी भी है, नर्मदा के उत्तरी तट पे ये पूरा लीला हुआ। आप दिल्ली से बम्बई जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे गुजरात होते हुए, आपको बड़ौदा करके एक स्टेशन आता है, उसके बाद और एक स्टेशन आता है भरूच करके, और भृगु काचला जो है वही भरूच हो गया है, इट हैज बिकम भरूच। उधर ये अद्भुत लीला हुआ। जैसे आप सबको ये मालूम है, ये लीला में ये बलि महाराज जैसे आए, वामन देव को स्वागत किया, बोला उनको क्या चाहिए, वामन देव ने कहा मुझे तीन पग चाहिए। तो बलि महाराज को भी अहंकार आया, उनका इतना अहंकार आया, तो देखिए मेरे पास आके तुम ये मांग रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं, हुआ मैं तीनों लोगों का मालिक हूं, आई एम लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, जो चाहे वो दे सकता हूं, आप बहुत सारी चीजें मांगना चाहिए, तीन कदम क्या मांग रहे हैं। मैंने बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, सिया चाहिए, इतना तो काफी है मुझे, ठीक है। बड़े अहंकार के साथ उन्हें दिया, चलो दे दो। लेकिन जैसे भगवान ने अपना रूप को विस्तार किया तो बलि महाराज देखते रह गए। वामन देव ने पहले स्टेप में पूरा नीचे के लोगों को पूरा आक्रमण कर दिया, और दूसरा स्टेप में क्या किया, पूरा ऊपर के लोगों को सब आक्रमण कर लिया। तो बलि महाराज ने पूछा अभी तीसरा स्टेप कहाँ रखूं, उनके पास कोई जगह तो था नहीं। तो तुरंत कृष्ण वामन देव ने क्या किया, बुला के उन्होंने बंधवाया। अभी कृष्ण के अंदर कोई दोष दिखा सकता है, देखो एक तो तीन स्टेप मांगा, बलि महाराज ने दान देने वाला व्यक्ति को धोखा दिया, इससे बड़ा कोई चीज हो सकता है, अभी क्या करें। दूसरी बात, अभी पूरा तो आक्रमण कर लिया, अभी तीसरा स्टेप एक स्टेप नहीं दिया, उसके पास जगह नहीं है, अभी है तो तभी देंगे ना, लेकिन फिर भी उनको बांध के रख दिया बेकार। तब उन्होंने कहा एक जगह बचा है, मेरा सर है, आप मेरे सर के ऊपर रखो, मैं आपका पूरा शरणागत हूं। तो ऐसे शरणागत भक्तों क्या किया, को दबा के पाताल में छोड़ दिया सुतल लोक में। ये क्या भगवान है आपका समझ में नहीं आता। और बाद में पता लगता है जब लोग सुनते हैं, भगवान का दया, भक्तानुकंप, इतना सब कुछ। ये पहला सीन में आपको ऐसा लगता है कि भगवान कितना, देखो एक तो वो झूठ, दूसरा छल, और तीसरा निर्दया, ये सब दिखाई पड़ता है। लेकिन लास्ट में वामन देव ने कहा बलि महाराज को, अगले बार, अगले जन्म में, अगले मनमंत्र में तो इंद्र बनोगे, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। कैसे रहूंगा, एक गेट कीपर के रूप में रहूंगा। इसको अत्यंत विडंबनम कहा जाता है। एक ओर छल किया, दूसरी ओर वही भगवान तीनों लोकों के मालिक हैं, अभी सुतल लोक में जाके बलि महाराज का द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। इसको अत्यंत विडंबनम, कृष्ण के जो कार्यकलाप है ये समझना जो है, लीलाएं जो समझना है, वो तभी संभव है जब बिल्कुल हृदय में कोई अहंकार ना हो। ये जो अहंकार जो है हमारे हृदय को पत्थर जैसा माना जाता है, कल शाम को हमने चर्चा किया, जब हृदय सरल होता है वो व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं को यथा रूप में बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाता है। जिसका हृदय कठोर है वो कृष्ण की लीला जो को समझना बहुत मुश्किल है। अभी भी वामन देव है द्वारपाल के रूप में है, बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में, ही इज जस्ट एज ए डोर कीपर। बलि महाराज का जो स्थान है वो केरल राज्य है, केरला के राजा है बलि महाराज। उधर एक जगह है जहाँ वामन देव का, कुछ लोगों का कहना है वामन देव का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, त्रिकाटक कारा करके एक जगह है। तो ये वामन देव की लीला है। इसलिए सहदेव गोस्वामी कृष्ण का गुणगान किस रूप में कहते हैं, छला छला यस्य विक्रमणे, छल करने वाले का, कोई कहते तुम छल करता है तो गाली हुआ। रोज हमको, हम भक्त लोग भी क्या करते हैं, वो भी कम नहीं है, कृष्ण का गुणगान गाली देके करते हैं। शिक्षाष्टकों में हम क्या करते हैं, यथा तथा वा विदधातु। अगर यूपी बिहार में जाके किसी को बोला रंपट, आपको मारने लगेगा। बहुत बहुत बड़ा गाली माना जाता है, लेकिन हम सब रोज सुबह मिलकर गाली रंपट, इससे तद अत्यंत विडंबनम। इसी बात को कुंती महारानी कहती है और एक उदाहरण देती है कि आपका विडंबन की लीला वो है, कल चर्चा करेंगे, दामोदर लीला, गोप्या ददे कृतागसि दामतावन। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।